जैसे कि आज के टॉपिक का नाम है मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, और मैं लिसनर्स को ये बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है ये हमने पिछले महीने जो हमारा पीसीपी था साइंस एंड टेक में उसमें शुरू कर दिया था। तो थोड़ा हमने इसमें कवर भी कर लिया है और जो नेक्स्ट पार्ट बच गया था उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं जो हमने पिछली बार चर्चा किए थे उसका एक रिकेपिचुलेशन करा दूँ। पहले तो मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन में हमने देखना है कि मोशन होता क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ कौन से स्टेट में है, वेदर इट इज़ इन रेस्ट और इन मोशन, पहले ये देखना है। तो रेस्ट कब कहेंगे हम, रेस्ट और कब कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी का जो पोजिशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज़ इन मोशन। और अगर चेंज नहीं हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज़ इन रेस्ट। अब जब मोशन की बात हो गई है कि बॉडी का पोजिशन चेंज हो रहा है, उसके स्टेट में चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे वो मोशन में है। पर ये जो चेंज है, ये मोशन जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमने देखा था रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। तो उसमें जो कुछ टर्म्स आएंगे जब मोशन को डिस्क्राइब करते हैं हम बॉडी के, तो कुछ टर्म्स आएंगे आपके सामने वो, और वो टर्म्स हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि बॉडी जैसे ही मूव करता है तो इनिशियल पोजीशन जब आपने उसको देखना शुरू किया, एट दैट टाइम टाइम इक्वल टू ज़ीरो, टाइम वहाँ से शुरू होता है, उस टाइम पे उसका पोजीशन क्या था। एंड जब आपने फाइनल टाइम जहाँ पे आपने बंद करा टाइम उसको ऑब्जर्व करना, वो हो गया फाइनल टाइम, और तब उसका पोजीशन क्या है। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस क्या है, जितना भी उसने लेंथ कवर करा है दैट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बट डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट में बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, पर जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। फिर आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, उसको हम अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने सीखा होगा। तो यहाँ पे कभी भी कोई ग्राफ आप जब हम ड्रॉ करते हैं उसमें एटलीस्ट टू वेरिएबल्स लेते हैं। तो दो वेरिएबल यहाँ पे हैं, टाइम एंड पोजिशन। पोजिशन और टाइम को लेके आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। द टाइम इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ टेकन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस, एंड वाई इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। हियर डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ पोजिशन एंड इट इज़ टेकन अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस। अब डिफरेंट टाइम पे उसके पोजिशन क्या क्या हैं उसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे प्रॉपर स्केल लेके, तो आपको ग्राफ मिलेगा बॉडी के पोजीशन के बारे में, या फिर उसके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे कि पहले फर्स्ट आवर में उसने 60 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट आवर 60 किलोमीटर, ऐसे इक्वल टाइम इंटरवल एक एक घंटे में वो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में ऑन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, देन इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोशन आप अपने चारों तरफ देखते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। जैसे कि आप घर से निकल के कहीं जा रहे हैं तो आपका जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। आप शुरू करते हैं, फिर कहीं पे गड्ढा है वहीं पे थोड़ा स्पीड कम किया, फिर जहाँ प्लेन आ रहा है कोई गाड़ी नहीं है आप वहाँ पे स्पीड बढ़ा देते हो, फिर कहीं आपको टर्न करना है आप कम कर देते हो, वैसे डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है एंड आपका स्पीड भी वेरी करता है, हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड में आप मूव नहीं करते हो। तो वो जो होता है इक्वल टाइम इंटरवल में ऑन इक्वल डिस्टेंस आप कवर करते हो तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद आता है आपका स्पीड। अभी मैंने जैसे स्पीड की बात करी तो स्पीड आप बहुत यूज़ करते हो कि इतने स्पीड में ये मूव कर रहा है, कि आप सिर्फ गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की जो एवरेज आप बताते हो तो उस पे तो आज डिस्कस करेंगे एवरेज किसको कहा जाता है, पर स्पीड भी आप बताते हो कि इतने स्पीड से जाने से यहाँ पहुँच जाएंगे, इतने टाइम में पहुँच जाएंगे, तो वो तो आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट है। जब भी आप घर घर से ऑफिस के लिए निकलते हो तो आप ये कैलकुलेट करके निकलते हो कि मैं इतने स्पीड से जाऊंगा, इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा, तो मुझे घर से इस टाइम निकलना पड़ेगा तभी जाके मैं पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ। तो यहाँ आप स्पीड ही कैलकुलेट करते हो कि आपके घर से जहाँ पहुँचना है उसकी डिस्टेंस इतना है और आपके पास इतना टाइम है तो किस स्पीड से जाओगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। तो दैट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज नोन एज द स्पीड। और सिमिलरली वेलोसिटी भी वैसे ही आएगा, बस उसमें डिस्टेंस की जगह पे आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं याद दिला दूँ कि जो स्पीड है या डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटीज है, दैट मीन्स उसमें डिरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स यू हैव टू स्पेसिफाई बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के जो रिलेशन के बारे में भी हमने बात करी थी, जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो वहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, बट अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो हो सकता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पर डिस्टेंस अगर बॉडी ट्रैवल किया है तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप घर से स्कूल तक गए और फिर वापस आ गए घर, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी आपका घर था और फाइनल भी आप अभी घर पे ही हो, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बट डिस्प्लेसमेंट जो आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस है उसका डबल डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ऐसे ही आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो अभी अभी जैसे मैंने एक बोला था और आप भी हर रोज़ यूज़ करते हो कि गाड़ी की एवरेज क्या है, तो वहाँ पे आप एवरेज स्पीड की बात करते हो। जो आप जब जाते हो, एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब आप गाड़ी में कहीं जाते हो तो आप देखते हो कि कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है और आपको कितना टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप घर से निकलते ही बिल्कुल शुरू करते ही गाड़ी आपने 60 पे चला दिया, ऐसा नहीं होता है, धीरे 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 करके आप स्पीड बढ़ाते हो। फिर कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा जाम है तो वहाँ पे स्पीड आपका कम हो जाता है, कहीं खाली मिलता है आप 60, अगर आपकी एवरेज है तब भी आप 60 से भी ज़्यादा से पे चला लेते हो कभी कभी, कभी 50 पे आ जाते हो, कभी 10 पे भी आ जाते हो, कहीं पे ब्रेक लगा के बंद भी कर ब्रेक लगा के खड़े हो जाते हो, तो तब तो वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो है जब आप बिल्कुल रेस्ट पे हो, गाड़ी खड़ी है जाम में, तो वो ज़ीरो वेलोसिटी हो गया। लेकिन आप तब एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो कि कितना टाइम आपने ट्रैवल किया है। सपोज आपके घर से ऑफिस या घर से स्कूल जाने के लिए आपको 2 घंटे लगे, और आपका डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो टोटल डिस्टेंस आपके घर घर से डेस्टिनेशन का हो गया सपोज 70 किलोमीटर, तो आपका एवरेज क्या हो गया फिर? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हम करते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे जो डिस्टेंस हम जो भी ट्रैवल करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड पे हम ट्रैवल नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म। इन दैट केस वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। वहाँ पे स्पीड नहीं कह के हम एवरेज स्पीड कहते हैं कि ड्यूरिंग द टोटल ट्रैवल टाइम व्हाट वाज द एवरेज स्पीड, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं था तो हम एवरेज निकालते हैं। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड? वी टेक द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज द एवरेज स्पीड। तो इस केस में एवरेज स्पीड का भी जो यूनिट है सेम एज द स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही आप ले सकते हो। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में भी आप वैसे ही करेंगे, डिस्टेंस की जगह पे आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डालना है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसके जो एग्जांपल्स आपकी किताब में दिए हुए हैं आप उसको देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सपोज एक बॉडी है जो पहले 30 सेकेंड में 50 मीटर कवर करता है और नेक्स्ट 45 सेकेंड में 100 मीटर कवर करता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इसमें आप देख सकते हैं कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, पहले 50 मीटर फिर 100 मीटर, तो 100 + 50 दैट इज 150 मीटर उसने कवर किया। एंड व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन? पहले 30 सेकेंड लगा था फिर 45 सेकेंड, तो टोटल हो गया आपका 75 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज़ 150 मीटर डिवाइडेड बाय 75 सेकेंड, एंड व्हिच कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई एवरेज स्पीड। हो सकता है वो हर सेकेंड जो 75 सेकेंड उसने ट्रैवल किया है, हर सेकेंड पे वो 2 मीटर पर सेकेंड पे ट्रैवल ना किया हो। कभी 0 भी हो सकता है किसी सेकेंड में, किसी सेकेंड में 4 भी हो सकता है, कभी 2 होगा, कभी 1 होगा, कभी 5 होगा, पर टोटल जो है आपका एवरेज स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस लिया है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, डिफरेंट केसेस अगर आप लेते हैं कि सपोज एक बॉडी पहले 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ट्रैवल किया, अगर वो बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं कवर कर रहा है, डिस्टेंस डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे हम? पहले 30 मीटर उसने टुवर्ड्स नॉर्थ ट्रैवल किया, उसके लिए उसको 10 सेकेंड लगे। अगेन 40 मीटर उसने टुवर्ड्स ईस्ट ट्रैवल किया, जिसके लिए उसको 10 सेकेंड लगे। तो इस केस में आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है, एवरेज स्पीड तो ऐसे ही निकालेंगे जैसे पहले हमने निकाला था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो वहाँ पे आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि पहले नॉर्थ फिर ईस्ट, तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे एक तो एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो उस ट्राइंगल का डायगोनल होगा। तो डायगोनल जो मिला वही आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको डायगोनल की लेंथ निकालना आता है मैथमेटिक्स में, तो उसमें आप निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 30² + 40² दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, टोटल टाइम इज 10 + 10 दैट इज 20 सेकेंड, 50 मीटर डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और एक केस हो सकता है एवरेज वेलोसिटी में कि अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में ही ट्रैवल कर रहा है और जहाँ से निकला था अगर पूरा एक राउंड उसने कवर कर लिया और पूरा एक कंप्लीट राउंड कवर करने के लिए उसको सपोज 20 सेकेंड लगे और रेडियस है 14 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 2πr, दैट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। बट टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। तो सेम केस में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग मिलेंगे। एवरेज वेलोसिटी विल बी ज़ीरो और एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं विच इज़ नॉट ज़ीरो। तो ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी में भी लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड, और ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, पर एवरेज स्पीड कभी ज़ीरो नहीं होता अगर बॉडी ट्रैवल कर रहा है तो। यहाँ पे इस केस में और एक चीज़ देख सकते हैं कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है किसी भी पॉइंट में अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे देन दे विल बी इक्वल, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम नहीं होगा इस केस में। तो ये था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात। अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली मोशन ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी के मोशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी बहुत आता है ये कि एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ को देख के आपको वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता है या फिर बॉडी के मोशन को एनालाइज करना होता है। ग्राफ की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी, ये एक स्किल है और ये आपको आगे जाके जब आप सीनियर सेकेंडरी में जाते हैं तो हर जो प्रैक्टिकल होता है कुछ कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो डाटा मिलता है उसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है और ग्राफ से ही कोई वैल्यू फिर उस ग्राफ से आपको जो चाहिए वो कैलकुलेट करना होता है। तो ग्राफ ड्रॉ करना सीखना एंड कोई ग्राफ को एनालाइज करके उससे वैल्यू कैलकुलेट करना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीखना ज़रूरी है। तो एक मोशन को हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ की बात करी थी, वैसे ही ग्राफ मीन्स पहले आपको दो एक्सिस लेते हैं हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो हमेशा टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम एक्स एक्सिस में लेंगे और जो दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम वाई एक्सिस में लेंगे। तो पहले बात करते हैं पोजिशन टाइम ग्राफ के। पोजिशन टाइम ग्राफ अगर आप ले रहे हैं और सपोज यहाँ पे जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 209 बुक नंबर बुक वन पे आप देख सकते हैं टेबल 9.8, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी डिफरेंट टाइम पे आपने पोजीशन नोट किया। आपके पास एक स्टॉपवॉच है, बॉडी मूव कर रहा है, आपने देखा पहले ज़ीरो, जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस टाइम पे उसका पोजीशन क्या था, तो वो ज़ीरो है। सपोज एट व्हेन यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट मीन्स एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो बॉडी वॉज एट डिस्टेंस ज़ीरो, उसने भी डिस्टेंस ज़ीरो से शुरू किया। फिर एवरी वन सेकेंड आपने उसका पोजीशन नोट किया, आफ्टर वन सेकेंड द बॉडी इज एट 10 मीटर, आफ्टर टू सेकेंड इट इज एट 20 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। ऐसे ही 30, 40, 50 ऐसे करके आपने 10 सेकेंड तक उसका पोजीशन नोट किया, सपोज इट इज एट 100 मीटर आफ्टर 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल हमने लिया है, वन सेकेंड एंड इन ईच टाइम इंटरवल इट इज़ कवरिंग 10 मीटर। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इसका मोशन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स इट इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इस केस में आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. तो एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में पोजिशन लिया. तो ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं ये ज़रूरी होता है कि हम एक सुइटेबल स्केल चूज करें, क्योंकि ग्राफ इतना लंबा नहीं होता है कि 100 मीटर का आप ग्राफ नहीं बनाएंगे. तो ग्राफ का पेज तो उतना ही होता है. तो वहाँ पे सुइटेबल स्केल, 1 यूनिट को टाइम स्केल में 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेकेंड लिया, और वाई एक्सिस में जहाँ पे आप पोजीशन ले रहे हैं वहाँ 1 यूनिट को आपने 10 मीटर लिया. तो फिर आप प्लॉट करेंगे इस करस्पॉन्डिंग टाइम में करस्पॉन्डिंग पोजिशन को अगर आप प्लॉट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन विल बी इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. तो इसमें आप देखते हैं ऐसे जब ग्राफ बनता है हम कहते हैं कि इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन. पोजिशन टाइम ग्राफ में इफ़ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस देन you can say that the motion of the body is uniform. That means it is covering equal distance in equal time interval. यहाँ पे आप इसके velocity calculate कर सकते हैं. यहाँ पे आपने देखा कि हर second में ये 10 meter cover कर रहा है. That means 10 meter per second cover कर रहा है. And अगर आपने टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे तो 100/10 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. और हर सेकेंड में आप देखेंगे एक सेकेंड के बाद इसका एक सेकेंड में इसने कवर किया 10 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड दूसरा सेकेंड जो था एक सेकेंड उसमें भी इसने 10 मीटर कवर किया. तो इसका इंस्टेंटेनियस भी आप कैलकुलेट करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड आया है, और टोटल में अगर आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. दैट मीन्स इसका मोशन यूनिफॉर्म रहा है थ्रू आउट द मोशन. तो ये यूनिफॉर्म मोशन का पोजिशन टाइम ग्राफ था. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये ऐसा नहीं रहेगा. आप अपना अगर आपके सामने बुक खोला हुआ है तो पेज नंबर 211 में देख सकते हैं फिगर 9.1. यहाँ पे चार ग्राफ दिए हुए हैं ए बी सी डी. तो पहला जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है. यूनिफॉर्म मोशन के लिए अभी जैसे हमने देखा दैट इट बी ए द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस फॉर इफ द बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी इज एट रेस्ट मीन्स इट्स पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट मीन्स इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन बट इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो यहाँ पे पोजीशन एक ही है, कोई भी टाइम ले रहे हो पोजीशन वही है. तो इसलिए दैट ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस. नॉन यूनिफॉर्म केस में दो चीज़ें हो सकता है. या तो नॉन यूनिफॉर्म मीन्स द पोजीशन इज नॉट और द बॉडी इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. इक्वल टाइम इंटरवल में वो ऑन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो ऑन इक्वल डिस्टेंस जो है वो हो सकता है इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है. तो दोनों केस के लिए अलग अलग ग्राफ बनेगी. आप यहाँ पे फिगर सी एंड डी आर फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सी में पोजीशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम एंड डी में पोजीशन इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग. तो आप ग्राफ को देख के टाइप ऑफ मोशन बता सकते हैं कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है. अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वेलोसिटी है. टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. तो वेलोसिटी जब हम वाई एक्सिस में ले रहे हैं तो इसमें भी हम सुइटेबल स्केल चूज करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे ही लिया आपने. और दो बॉडी हैं ए एंड बी. ए का वेलोसिटी आपने लिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 मीटर पर सेकेंड एट टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऐसे ही आपने लिया. बी के लिए आपने लिया जीरो पे जीरो है, वन पे टेन है, टू पे भी टेन है, मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, हर सेकंड पे इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रहता है। तो इन दोनों के लिए अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे भी सुइटेबल स्केल अगर हम लेते हैं तो वन यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड वन यूनिट अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्जेक्ट ए के लिए आप अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा, और बी के लिए अगर आप प्लॉट कर रहे हैं तो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे भी आपको एक ग्राफ मिल रहा है जहाँ पे इट इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और पोजिशन टाइम में भी एक ग्राफ मिल रहा था विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बट दोनों केस अलग अलग हैं क्योंकि वो पोजिशन टाइम था, सो दैट मोशन वाज, उसमें बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है, पोजिशन कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। पर यहाँ पे जब आपको पैरेलल लाइन मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसका मतलब बॉडी रेस्ट पे नहीं है, बॉडी मूव कर रहा है बट उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। वहाँ पोजिशन टाइम में यूनिफॉर्म मोशन के लिए द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, बट इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे देखते हैं कि हर सेकेंड में वेलोसिटी सेम है, दैट मीन्स वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और ग्राफ से और एक चीज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करेंगे जो आपको ग्राफ मिला है। सपोज इन केस ऑफ बी आपने देखा कि द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो उस ग्राफ के अंडर जो एरिया है दैट विल बी, अगर आप कवर कर लेते हैं दैट विल बी रेक्टेंगल, एंड उस रेक्टेंगल की एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आपने लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया तो इट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल एंड द वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम आप जानते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल, उस टाइम इंटरवल में उसका क्या डिस्प्लेसमेंट था वो निकल के आता है अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करते हैं। तो इन केस ऑफ बी इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्स इक्वल टू वी टी फॉर यूनिफॉर्म मोशन, द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो या ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये तो हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात करी। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली ट्रैवल नहीं कर रहा है, जैसे कि आप जैसे एक बॉल को किक मारते हैं वो मूव करता है, पहले बहुत स्पीड से जाता है फिर धीरे 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 वो स्लो होके फिर रेस्ट पे आ जाता है, तो जब रेस्ट पे आ जाता है वो टोटल इंटरवल पे जब से उसका वेलोसिटी आपने किक किया, ज़्यादा वेलोसिटी था फिर धीरे धीरे स्लो में आ गया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि विथ टाइम इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे इट इज़ नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, वेयर वेलोसिटी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, दैट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होता है, इसको कहते हैं एक्सलरेटेड मोशन। तो ये एक्सलरेटेड मोशन ये आपके लिए नया वर्ड है, पर गाड़ी में जब आप बैठते हो और एक्सलरेटर दबाते हो उसको जो एक्सलरेटर बोलते हो वही एक्सलरेशन और एक्सलरेटर, उसी वर्ड से एक्सलरेशन से एक्सलरेटर आया है, जो आपका गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट जो भी मशीन आपको एक्सेलरेशन देता है, आपकी गाड़ी को एक्सेलरेट करता है, दैट इज़ नोन एज एक्सेलरेटर। उसको मोड़ने के बाद आपका स्पीड इंक्रीज होता है, दैट इज़ वाई दैट इज़ नोन एज एक्सेलरेटर। तो जो वेलोसिटी में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, और वैसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपका मोशन जब गाड़ी में जाते हो तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि हमेशा आपका स्पीड चेंज होता रहता है, क्योंकि आप एक्सेलरेटर दबाते हो, फिर कम करते हो, बढ़ाते हो, कम करते हो, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है उसमें। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, इन दैट केस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कैलकुलेट आप कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल लेके आप उसमें वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी क्या है नहीं बोल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी। पहले सपोज फॉर एग्जांपल आप जा रहे थे, आपका हमेशा आप देख सकते हैं किसी भी व्हीकल में आप बैठे हैं वहाँ पे एक स्पीडोमीटर होता है और वो हमेशा दिखाता है कि अभी आपका स्पीड क्या है, तो उसको देख के आप पता कर सकते हैं। अभी टाइम आपने देखा कि स्पीड क्या है, वो 50 पे जा रहा है, आपने एक्सेलरेटर दबाया वो 70 पे पहुंच गया, तो एक सेकंड में आपने 50 टू 70 पे चेंज कर दिया, दैट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, 70 माइनस 50 दैट इज़ 20 किलोमीटर पर सेकंड आपने चेंज कर दिया। तो एक सेकंड में आपने अगर ये चेंज करा है तो दैट इज़ एक्सेलरेशन, द चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट होगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही इसके यूनिट्स आएंगे। सो इसका भी आप ग्राफ से वैल्यू निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमने बॉडी ए के लिए लिया था ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, व्हिच इज द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इन दैट केस वेलोसिटी वॉज नॉट कॉन्स्टेंट, इट वॉज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वहाँ पर जो मोशन था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, हर सेकेंड के लिए आप निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं केस ए की बात कर रही हूँ जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा था, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉन्स्टेंट, सेम चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, चेंज सेम है इन ईच टाइम इंटरवल, देन दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी उतना ही है। पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है अगर सेकंड वन पे वो 10 मीटर पर सेकंड था, सेकंड टू में और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो दो सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकंड, तीन सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी होगा 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी उसका डायरेक्शन होता है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और इसमें एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देन इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यदि अगर इंक्रीज हो रहा है देन इट इज़ पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। तो ये हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात की। अगर एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो उस केस में क्या होगा, दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग। वेलोसिटी नॉट चेंजिंग का मतलब है वेलोसिटी इज़ कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। तो हमेशा आपको एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में मिलेगा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन द एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन की बात हमने कर ली, अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं व्हेन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। सो सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी टेकन टू बी यू, फाइनल वेलोसिटी टू बी वी, एंड आफ्टर टाइम टी आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है एस। ये नोटेशन है, इन सारे नोटेशन में आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको याद करना है। तो जैसे आप जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी, हमने इनिशियल वेलोसिटी यू लिया है, फाइनल वी लिया है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज टी। सो ए इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है कि वी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, ये हमने निकाला था, एंड एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं वी प्लस यू डिवाइडेड बाय टू, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू इनटू टाइम इंटरवल दैट इज टी। सो एस इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाय टू इनटू टी। वी के जगह पे फर्स्ट इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो एस इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाय टू इंटू टी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, आपको जब न्यूमेरिकल आता है उसमें ये नहीं लिखा होता है कि यू इक्वल टू ज़ीरो, आपका लिखा होगा कि द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इसलिए आप वहाँ पर जब रेस्ट से बॉडी का मोशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आप डायरेक्टली यू इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे। तो अगर यू इक्वल टू ज़ीरो होता है देन एस इक्वल टू सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर, यू टू विल यू इंटू टी विल बी ज़ीरो, सो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऐसे आप इसको पुट करके अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आपका न्यूमेरिकल आता है आप पहले ये देखना है कि क्या क्या डाटा गिवन है और उसमें क्या आपको निकालना है। सारा लिखने के बाद आप देखेंगे कि ऐसा एक इक्वेशन होगा जहाँ पे सारे उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी नोटेशंस हैं, उसमें से एक आपका अननोन है बाकी सारे नोन हैं। तो उसी इक्वेशन को आप पुट करेंगे तो आपको जो क्वांटिटी चाहिए वो मिल जाएगा। थर्ड इक्वेशन जो आता है उसमें ये दोनों एवरेज वेलोसिटी एवरेज टाइम ये और पहले दोनों इक्वेशन पुट करके आप थर्ड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी एंड एस इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई टी। तो ए इंटू एस इक्वल टू दोनों की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। सो टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे वी है, यू है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे आप अगर टाइम नहीं दिया है और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ है देन यू कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज। सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो था हमारा मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन ख़त्म होता है। इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको आप अगर वर्कआउट करेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट्स। और यहाँ पे एक ही जगह पे आप जी लिख सकते हैं, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में एक ही जगह पे आप जी रिप्लेस करके कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं।